Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nitya अद्वैतचंद्र जय गौरभक्तवृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय छे पया संख्या 47 सुनि प्रभु कहे चोरा तेरे दर्शा आय आय आज तोर करे मुदंडा सुनि प्रभु कहे चोरा तेरे दर्शा आय आय आज तोर करे मुदंडा तो आज हम चैतन्य चरितामृत से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज विशेष उत्सव है, चिड़ादि उत्सव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा। तो कृष्णदास कविराज अंत्य लीला में इस चिड़ादि उत्सव का वर्णन बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से करते हैं, और हर भक्त के लिए जो चिड़ादि उत्सव है वो बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि से देखा जाए कि मनुष्य जीवन या मनुष्य जीवन में उत्सवों के लिए बहुत बड़ा स्थान है। क्यों उत्सव महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में? क्योंकि हम सब एक विशेष सुख को ढूंढ रहे हैं, और उस सुख के द्वारा हमारी जो प्यास है सुख की वो बुझाना चाहते हैं। लेकिन ये जो उत्सव है वास्तव में मनुष्य के जीवन में नहीं होते तो वह सुख की अनुभूति थोड़ी भी नहीं कर पाता। इसलिए उत्सव जब आते हैं व्यक्ति के जीवन में तो वह सारे अपने जीवन के स्ट्रगल्स सब दूर छोड़ देता है और उत्सव में भाग लेता है। इसलिए लोग हमेशा उत्सवों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में बिल्कुल विपरीत है। यहाँ क्या है, प्रतिदिन ही उत्सव है। कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत का स्वभाव है वहां चलना तो क्या है, नृत्य है, बोलना क्या है, गान है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो मंदिर है ये वैकुंठ से आयोजन है, और इसलिए शुकदेव गोस्वामी वैकुंठ के लिए एक शब्द यूज करते हैं भागवतम में, उसमें वो कहते हैं अखंडित उत्सव। मतलब वैकुंठ का मतलब है जहां उत्सवों का खंडन नहीं है, निरंतर उत्सव चलते रहते हैं चलते रहते हैं। जैसे हम दक्षिण भारत जाते हैं श्रीरंगम में 365 दिन में वहां 360 दिन उत्सव होते हैं। हर रोज भगवान रंगनाथ बाहर आते हैं और कोई ना कोई उनका फेस्टिवल या उत्सव होता रहता है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने गीत में कहते हैं शरणागति में, जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक भाय। वो कहते हैं मेरे घर में भी उत्सव हो रहे हैं, प्रतिदिन में वैकुंठ की अनुभूति करता हूँ। कैसे, जिस दिन मैं अपने घर में देखता हूँ वैष्णव या भक्तगण मिलकर नाम संकीर्तन करते हैं तो मेरा घर घर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, गोलक वृंदावन, जहां उत्सव ही उत्सव है। तो हमारे जीवन में ये उत्सव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें भक्तों का संग लाभ होता है। जब उत्सव आते हैं तो सारे भक्त एकत्रित आते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, और भक्तों का संग हमें मिलता है, और उस भक्तों के संग से क्या मिलता है हमें, हमारे जीवन में उत्साह मिलता है। भगवान और गुरु की सेवा करने की जो प्रेरणा है या उत्साह हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे उत्सवों का जो अंतिम रिजल्ट क्या होना चाहिए है? तो आचार्यगण कहते हैं कि जितने अधिक उत्सव हम मनाते हैं आयोजन करते हैं भाग लेते हैं उसका परिणाम उसका रिजल्ट यही है कि हम कृष्ण के नजदीक पहुंचने चाहिए। और यही वास्तव में आज का जो उत्सव है चिड़ादि उत्सव जो रघुनाथ दास गोस्वामी का है, ये इस चीज का मूर्तिमान उदाहरण है कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये उत्सव मनाया, जिसके द्वारा वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों के क्या हो गए, नजदीक चले गए। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु, हाँ ये जो चिड़ा उत्सव कैसे उन्होंने मनाया, हाँ तो इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत से सुनने का प्रयास करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन कृष्णदास कविराज अंत्य लीला में करते हैं, और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस उत्सव के द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की जो अहेतु की कृपा है
वो प्राप्त करती की थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का प्राकट्य बंगाल में होता है सप्तग्राम में। जैसा हम जानते हैं कि सप्तग्राम वो स्थान है जहाँ सरस्वती के किनारे पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी, भगवत दर्शन किया था। ये सप्तग्राम में सात गांव हैं, उनमें से एक गांव है कृष्ण नगर, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी निवास करते थे। उनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार और उनके चाचा थे हिरण्य मजुमदार। मजुमदार उनकी उपाधि है। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का प्राकट्य हुआ इस घर में। लेकिन एक विशेषता है रघुनाथ दास गोस्वामी की। कृष्णदास कविराज कहते हैं, सेइ गोवर्धन र पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल है तिते हो विषय उदास। कि एक धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी रघुनाथ दास गोस्वामी का जो अनुराग है विषयों के प्रति या धन संपदा के प्रति बिल्कुल भी नहीं था। वो पूर्ण रूपे न बचपन से ही विरक्त थे और कृष्ण के प्रति एक तीव्र अनुराग उनके हृदय में सदैव उमड़ता रहता था। तो श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, ये है नित्य सिद्ध व्यक्ति का लक्षण कि बचपन से ही कृष्ण के अतिरिक्त चीजों में उसका कोई अनुराग नहीं है। बचपन से ही वो कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के अनुराग में डूबा रहता है। प्रभुपाद अपना उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी बचपन से महान भक्त थे और हमें भी ऐसा मौका मिला कि जिसके द्वारा हम कृष्ण का स्मरण कर पाए। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी इतने अधिक धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वो भौतिक विषयों के प्रति उदास थे और बचपन से ही उन्हें हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ था। तो हरिदास ठाकुर यदुनंदन आचार्य आदि के घर में आते थे, वहां निवास करते थे। तो बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर की सेवा करते थे, उनका उचिष्ट ग्रहण करते थे और उनके द्वारा वर्णित भगवान का जो नाम है उसको श्रवण करते थे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने एक दिन एक विशेष न्यूज सुनी। क्या सुना रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि नवद्वीप से चैतन्य महाप्रभु कटवा गए हैं और वहां जाकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। तो ये जो न्यूज है पूरे बंगाल में आग की तरह फैल रहे थे और ये जो न्यूज आई सप्तग्राम में और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुनी तो वो अत्यधिक दुखी हो गए और उनके हृदय में इतनी वेदना हो गई कि वह मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते कि कब मेरा जीवन धन्य होगा कि जिस दिन मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन कर पाऊंगा। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए लालायित हो गए थे। और फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके वापस शांतिपुर आते हैं। जब शांतिपुर आते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है कि महाप्रभु संन्यास के उपरांत शांतिपुर आए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता के पास जाते और उनके चरणों में दंडवत करते हैं गोवर्धन मजुमदार के, और वो कहते कि पिता आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने जा रहा हूँ या जाना चाहता हूँ, आप मुझे शांतिपुर भेजिए। हाँ, तो पहली बार रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुर जाते कई सारे सेवकों के साथ और वहां सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का जो सौंदर्य और उनका नृत्य, उनका कीर्तन, उनका कथा, इन सब चीजों को देखकर सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी मुझे वापस अपने घर नहीं जाना है। जहां महाप्रभु जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। हाँ, लेकिन उनकी ये इच्छा फलीभूत नहीं हुई। रघुनाथ दास गोस्वामी बल्कि छह गोस्वामियों में ये पहले ऐसे गोस्वामी हैं जो चैतन्य महाप्रभु को मिले थे। बाकी गोस्वामी तो अलग अलग समय में मिले, लेकिन सर्वप्रथम रघुनाथ दास गोस्वामी उनको मिलते हैं। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी, जब तक वहां उन्होंने अद्वैत आचार्य के घर में निवास किया तब तक अद्वैत आचार्य उनको उच्चिष्ट देते थे महाप्रभु का। ऐसे लगभग एक हफ्ते के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी वहां रहे और चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल पड़े। कृष्णदास कविराज कहते हैं,
प्रभु तारे विदाय दिला गेला नीला चल तिवो घरे आसी हैला प्रेमे ते पागल।
वो कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जो पागलपन है उसकी अभी शुरुआत हो गई है। कैसे शुरुआत हो गई है? क्योंकि अभी वो इतने अधिक महाप्रभु के प्रति अनुरक्त हो गए थे कि वो सोच रहे थे कि अभी मैं चैतन्य महाप्रभु के बिना अपना जीवन धारण नहीं कर सकता। और जैसे वो वापस घर आए तो उनका पागलपन बढ़ने लगा। पागलपन का मतलब है कि उनका अनुराग किसी और व्यक्तियों से मिलने के लिए नहीं था। महाप्रभु और कृष्ण के अलावा कोई और चर्चा वो नहीं करना चाहते थे। अभी उनका आहार कम हो गया था, निद्रा कम हो गए थे और केवल चैतन्य महाप्रभु के रूप माधुरी का वो स्मरण करते जा रहे थे और सोचते थे कि कब मैं अपने घर से भागूंगा। तो जब कभी कभी घर से भागते भी थे तो उनके पिताश्री जाके पकड़ कर ले आते थे और उनको रस्सी से बांध देते थे और फिर उनको उनकी देखभाल करने के लिए 11 लोगों को नियुक्त किया। कृष्णदास कविराज कहते हैं, 5 सिक्योरिटी गार्ड थे, 4 सेवक थे और 2 ब्राह्मण थे। ऐसे 11 लोग हमेशा रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ खड़े रहते थे कि वो घर से बाहर ना जाए, वो घर से भाग ना जाए। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर सोचते थे कि मुझे इस घर से निकल जाना है, नीलाचल जाना है, चैतन्य महाप्रभु के पास निवास करना है। तो ऐसे कई दिन बीते तो फिर से एक न्यूज उन्होंने सुनी रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि चैतन्य महाप्रभु फिर से शांतिपुर आए हैं। तो अभी इनसे रहा नहीं गया। अभी पिता को लगा कि ये बेटा अभी शांतिपुर से भाग ही जाएगा। हाँ, जैसे इस्कॉन में भी कई डिवोटीज होते हैं, वो भाग के चले जाते हैं। एक बार पागल पर जब सवार होता है यूथ प्रीचिंग का तो वो छोड़ ही देता है सब कुछ। हाँ, तो ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके पिता भेज नहीं रहे थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, अन्यथा ना रहे मोरा जीवन, यदि आप मुझे शांतिपुर नहीं जाने दोगे तो मेरा जीवन नहीं रहेगा, मैं अपने शरीर को इसी घर में त्याग दूंगा। तो उनके पिता डर गए। रघुनाथ दास गोस्वामी एकलौते पुत्र थे और इतने धनी थे कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो फिर सारे सेवकों के साथ, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुर पहुंचे और महाप्रभु के संग में वहां 7 दिन के लिए फिर से रहे। और इनके हृदय में यही विचार आ रहा था कि शांतिपुर से कैसे जगन्नाथपुरी भागो, कैसे भागो, तो इसको केवल एक ही व्यक्ति जानता था। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु थे जो जानते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में अभी क्या चल रहा है। वो केवल यही सोच रहा है कि मुझे घर से भागना है, घर से भागना है। तो महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के घर के एक साइड में उनको बिठाया और उनको विशेष उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, स्थिर है या घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधपुर। तो उन्होंने कहा, अरे रघुनाथ जरा स्थिर हो जाओ, पागल मत हो, धीरे धीरे तुम इस भौतिक जगत के सागर को पार कर जाओगे। मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हया। तो महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ तुम ये मरकट वैराग्य का प्रदर्शन मत करो, तुम्हें क्या करना चाहिए, इस भौतिक जगत के विषयों से अनासक्त होकर व्यवहार करना चाहिए। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, आंतरिक रूप से भगवान के प्रति तीव्र अनुराग सेवा की भावना अपने हृदय में रखो, लेकिन बाहर उसका प्रदर्शन मत करो कि आप कितने बड़े भक्त हो, कितने कृष्ण के लिए व्याकुल हो। हाँ, तो ऐसे महाप्रभु ने जब उनको उपदेश दिया और महाप्रभु ने कहा, अचिरात कृष्ण तोमाय करे वे उद्धार, अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में भगवान कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, आपको इस संसार सागर के बंधन से तुम्हें मुक्त करेंगे। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा तो रघुनाथ दास गोस्वामी शांत हो गए, शांत होकर वापस चले जाते घर। और लगभग कृष्णदास कविराज लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि 2 साल बीते तब तक वो शांति थे। उनके माता पिता को लगा कि अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। सारे उसके जो चाल चलन है वो सब एक सज्जन व्यक्ति की भांति दिख रहे हैं, लेकिन अभी 2 साल के बाद फिर से वो पागलपन का जो दौरा है वो पड़ने लगा। क्या दौरा था? घर से भाग जाना। तो ऐसे ही एक दिन ये भाग गए घर से और फिर उनको पकड़ के ले आए, तो उनकी जो माँ है वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता को कहती है कि आप इस पुत्र को बांध के क्यों नहीं रखते हैं? लोहे की जो श्रृंखला है उससे इसको बांध के रखो घर में परमानेंटली। तो उनके पिता बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता कहते हैं उनकी पत्नी को, इंद्र समा ऐश्वर्य श्री अप्सरा सा ये सब बांधी तेजारा नारी ले कमान। वो कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति 2 चीजों से बंध जाता है, उसको किसी और बंधन की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा बंधन है जिसमें चैन दिखाई नहीं देती। और वो बंधन क्या है? वो कहते हैं एक है धन संपदा ऐश्वर्य और दूसरा है श्री। हाँ, इस संसार में 2 चीजें व्यक्ति को अपने आप बांध देती है। जैसे कोई व्यक्ति घर में लड़का काम आदि नहीं करता, ऐसे निठल्ला मस्ती करते रहता है, तो माता पिता कहते हैं इसकी शादी कर दो, ये ठिकाने आ जाएगा, इसको अकल आ जाएगी। क्योंकि उनको पता है एक बार पत्नी जीवन में आ गई कि ये बिल्कुल एक ही है कुरुनंदन, बिल्कुल सामने ही हाँ चलते रहेगा। तो वैसे ही ये कहते हैं कि इसकी बातें कुछ अलग है। इंद्र समा ऐश्वर्य, ये रघुनाथ के पास इंद्र के समान ऐश्वर्य है, इतना धन संपदा है। और उसकी पत्नी कैसे है? श्री अप्सरा सम, स्वर्ग की अप्सरा है, उसकी पत्नी के सामने फेल है, इतनी अधिक सुंदर है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति इन 2 चीजों से नहीं बंधा, वो क्या चैन लोहे की श्रृंखला से बंध सकता है? हाँ, तो फिर वो कहते हैं चैतन्य चंद्र कृपा हया चे चैतन्य चंद्र रबातुर के राखिते पारे। तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है। तो यदि हम कैसे समझे कि किसके ऊपर महाप्रभु की कृपा है? जो व्यक्ति 2 चीजों से क्या है? अनासक्त है। और एक तीसरी चीज, जिस व्यक्ति के हृदय में विनम्रता का भाव प्रकट हो रहा है, समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की महती कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा वो प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे उनके पिता कहते हैं कि ये तो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है, और जो भी चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है ऐसे व्यक्ति को इस संसार में कोई भी बांध नहीं सकता, ये निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की ओर चला जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि अभी मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, 2 बार शांतिपुर में मिला, घर से इतनी बार भागने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं महाप्रभु के चरणों को प्राप्त नहीं कर पाया। बल्कि शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि इनके हृदय में बहुत लालसा है ग्रह त्याग करने की और मेरे आंदोलन में भाग लेकर जगन्नाथपुरी में मेरे साथ निवास करने की, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था शांतिपुर में उन्हें कि जब मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन यात्रा से वापस नीलाचल आ जाऊंगा तो आप क्या करना, किसी ना किसी बहाने से मेरे पास वापस आ जाना, किसी ना किसी छल से। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी सोच सकते हैं कि क्या मैं छल करूं जिसके द्वारा घर से भाग जा सकता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर में कहते हैं कि कृष्ण क्या करेंगे, आपको स्फुरित करेंगे। कैसे घर से भागना है वो बुद्धि ददामि बुद्धि योगम, घर से भागने की बुद्धि कौन प्रदान करेंगे? कृष्ण करेंगे। कृष्ण कृपा जारे ताके के राखिते पारे, जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होगी घर में कोई भी उसे बांध के नहीं रख सकता। तो इस प्रकार से ऐसा बहुत दिन तक अपने घर में सोच रहे थे महाप्रभु के चरण मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो उनको एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि एक गलती मुझसे हो रही है, और वो गलती क्या है? श्रीमान नित्यानंद प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं है। किसकी कृपा नहीं है? नित्यानंद प्रभु की। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की मुझ पर कृपा नहीं है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना गौरांग महाप्रभु के जो पद है या चरण है उनको प्राप्त करना संभव न नहीं है, कितना भी व्यक्ति प्रयास करे। तो इसलिए उन्होंने सोचा मुझे नित्यानंद प्रभु के अनुगत होना होगा, नित्यानंद प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त करनी होगी। और तब उन्हें पता चला कि अभी नजदीकी पानीहट्टी ग्राम है, वहां नित्यानंद प्रभु का आगमन हो गया है। और नित्यानंद प्रभु वहां आए थे, कब आए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु को बहुत चिंता थी कि मैंने ये आंदोलन शुरू तो किया है, नाम संकीर्तन और प्रचार का आंदोलन, लेकिन मैं अभी नवदीप छोड़कर जगन्नाथपुरी आया हूँ, मेरे बाद प्रचार कौन करेगा, इस आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा। तो नित्यानंद प्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु ने उनको एकांत में लिया और उन्होंने कहा कि नित्यानंदा आप नवदीप चले जाओ और इस आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है उसका कार्य संभालो। तो नित्यानंद प्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु ने कई सारे भक्तों को जो द्वादश गोपाल है सखाज हैं उनको भेजा था। तो बहुत सारे संगियों के साथ पार्षदों के साथ नित्यानंद प्रभु बंगाल आए थे और बंगाल आते आते पानीहट्टी ग्राम जहां राघव पंडित अपनी जो सिस्टर है दमयंती के साथ निवास करते हैं वहां नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ रुके थे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु बहुत नजदीक आए हैं तो उन्होंने सोचा मुझे नित्यानंद प्रभु के पास जाना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो अंदर से तो डर लग रहा था। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ अपने सेवकों को लेकर नित्यानंद प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि नदी के किनारे ही एक बड़े से वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ आज एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूर से देखा तो उनको लगा मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य वहां एक साथ उदित हो गए हैं, इतना अधिक तेज उनको नजर आ रहा था। और नित्यानंद प्रभु को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी वहां प्रणाम करते, दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का सेवक कहता है कि देखो वो रहा रघुनाथ, आपको दूर से प्रणाम कर रहा है। तो जैसे उन्होंने देखा कि ये रघुनाथ मुझे दूर से प्रणाम कर रहा है तो नित्यानंद प्रभु ने ये जो श्लोक है वो बोला, ये चीज बोली। नित्यानंद प्रभु ने कहा सुनि प्रभु कहे छोरा दिली दर्शन आय आय आजी मोरा करे मुदंडन। तो नित्यानंद प्रभु उस चबूतरे में संगियों के साथ बैठकर बोल उठे कि अरे हे चोर, हाँ तुम तो चोर हो, इतने लंबे समय के बाद तुम मिले हो, इधर आओ मैं अभी तुम्हें दंडित करूंगा। तब ये तो डर गए थे। कौन डर गए थे? रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ पहले तो बोल रहे संबोधन कर रहे हैं, कौन सा शब्द यूज करके चोर, अभी आपसे कोई मिलने आया है आप कहेंगे चोर इधर आ, और वो भी इतने महान भक्त थे, महाप्रभु के लिए पागल थे। नित्यानंद प्रभु कहते चोरा हे चोर इधर आ जाओ, मैं तुम्हें दंडित करूंगा, दंड दूंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत डरे हुए थे, वो आ ही नहीं रहे थे। हाँ कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उनको फिर जबरदस्ती अपने पास ले आए और लाकर क्या किया, दो प्रकार का दंड नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रदान किया था। हाँ पहले तो शास्त्र आचार्यगण कहते कि उनको चोर क्यों कहा गया था, नित्यानंद प्रभु ने चोर इसलिए कहा क्योंकि नित्यानंद प्रभु के एक में उद्धान है श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसको वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं अमर प्रभु र प्रभु श्री गौर सुंदर। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि मेरे प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु, और मेरे प्रभु के प्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपदा। तो नित्यानंद प्रभु के एकमात्र जो धन है वो चैतन्य महाप्रभु है। और ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे, महाप्रभु रूपी ये जो धन है उसको चुराने का प्रयास कर रहे थे। कितनी बार प्रयास किया, दो बार तो डायरेक्ट धन के पास गए थे शांतिपुर में, लेकिन हाथ में नहीं लगा, और बाकी समय में घर से बाहर निकले थे चोरी करने के लिए, लेकिन वो पकड़े जाते थे हर समय। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये तो चोर हो तुम, क्योंकि मेरा जो धन है तुम चुरा रहे हो। और वास्तव में नित्यानंद प्रभु का दंडित कराना बड़ा अद्भुत है। पहला दंड उन्होंने दिया, बुलाया उनको ले लिया और अपने चरणों के नीचे रखा, ऊपर सर में चरण रखा, ये पहला दंड था। और दूसरा दंड क्या दिया उन्होंने, दूसरा दंड उनका अद्भुत था। दूसरा दंड उन्होंने कहा, छेड़ा दये बक्षण करह मोर गने, सुने आनंदित हैला रघुनाथ मने। दूसरा दंड कहा कि जितने देखो मेरे कितने संगी मेरे आसपास बैठे हैं, इन सारे संगियों को क्या खिलाओ, छेड़ा दही खिलाओ। और ये दंड सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी आनंदित होते हैं और वास्तव में ये दंड क्या बन जाता है, वरदान बन जाता है। कई बार जैसे भक्त कुछ हरकतें करते हैं तो उनको दंडित किया जाता है कि जाओ माया को भक्ति शास्त्र करके आ जाओ, भक्ति वैभव करो। या फिर कहते कि ठीक है आप बिना बता के चले गए तो प्लेट क्या करो, सफाई करो। बल्कि लगता है दंड है लेकिन उसमें क्या छुपा हुआ है, वरदान है। अभी बाहरी रूप से लग सकता है कि परीक्षित महाराज को शाप दिया, लेकिन शाप नहीं था, वो वास्तव में वरदान था जिसके द्वारा सारे जगत को श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ और साक्षात शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से उन्हें भगवत कथा का श्रवण करने का लाभ मिला। तो बाहरी रूप से तो लग सकता है कि ये सारा दंड है, लेकिन भक्तों के द्वारा दिया हुआ जो दंड है वो वास्तव में कृष्ण के नजदीक हमें ले जाता है। जैसे नलकुवर और मणिग्रीव, उनको भी दंडित किया था, किसने, नारद ने, लेकिन वो दंड वास्तव में वरदान बना। भगवान कृष्ण उनका उद्धार करते हैं और उनका अपना दर्शन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भक्तों के द्वारा जो दंड है वो वास्तव में दंड नहीं है, उसमें महान जो वरदान है वो छुपा हुआ है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको दो दंड दिया, एक तो उनके सर पर अपने चरण रखे और दूसरा दही चिड़ा खिलाने के लिए कहा। इसका मतलब है रघुनाथ दास गोस्वामी को वैष्णव की सेवा करने का मौका प्रदान किया। तो इस प्रकार से जब इस दंड को रघुनाथ दास गोस्वामी सुनते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी आनंदित हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। तो बल्कि इससे पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु करुणा घन विग्रह है। आप कई करुणा के बड़े बड़े उदाहरण देखे होंगे लेकिन शास्त्र कहते हैं करुणा का सर्वोच्च उदाहरण कोई है तो वो श्रीमान नित्यानंद प्रभु है। इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है। जिस जो मार खा रहे हैं लेकिन फिर भी वो मार देने वाले को प्रेम दे रहे हैं। हमें कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी थप्पड़ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन यहाँ जो जगाई मदाई है उन्होंने उनको मारा, उसके बदले में नित्यानंद प्रभु ने क्या करते हैं, अपना जो भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो प्रदान करते हैं। इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा। तो ऐसे अक्रोध है, बिना क्रोध से रहित है नित्यानंद प्रभु, और बाहर निकलते प्रचार करने के लिए कैसे, अभिमान शून्य, बिना किसी अभिमान, बिना किसी युगों के। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया, अपने सेवकों को अलग अलग गांवों में भेजा। सेवकों ने जाकर जितना चिवड़ा, दही, मिठाइयां, दूध, चीनी, केले जो भी मिल रहा था सारा खरीद कर लेके आए। और कई लोगों को ये पता चला कि पानी हाटी में गंगा के किनारे चिड़ा दही उत्सव हो रहा है। जैसे होता है ना कि अभी फिस्ट हो रहा है नीचे टेंपल हॉल में, तो सब जगह वैसे ही पता चल जाता है। तो वैसे ही जब पता चला कि चिड़ा दही उत्सव हो रहा है तो सब प्रकार सब जगह से जो सज्जन लोग हैं, ब्राह्मण हैं, सब लोग अपने अपना कार्य छोड़कर गंगा के किनारे आ रहे थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि असंख्य असंख्य लोग वहां आ रहे थे और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस भीड़ को देखा तो उन्होंने सोचा जितना चिड़ा दही आदि लाया है वो काफी नहीं है, उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और अपने सेवकों को दूर दूर के गांव में भेजा कि जाओ और भी अधिक सामान लेके आ जाओ। तो वो सारे उनके सेवक जाते हैं, 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र लाते हैं, 200-400 छोटे छोटे पात्र लेके आते हैं और सब में जो चिवड़ा है या चिड़ा है वो भिगाया जाता है और फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के सेवकों ने और ब्राह्मणों ने दो प्रकार का जो चिवड़ा है वो बनाया। एक था कि जिसमें गरम दूध और चिवड़ा भिगाया गया था और उसमें फिर चीनी डाला, चीनी और केला आदि डाला था, और दूसरे प्रकार का चिवड़ा था जिसमें जो दूध को बहुत गाढ़ा बनाया था रबड़ी की तरह, और उसमें विशेष प्रकार का केला, चंपा केला डाला था, उसमें घी, कर्पूर और चीनी आदि मिलाया था। तो ये दो प्रकार के जब चिवड़ा बनाए गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनका वितरण करना शुरू कर दिया। तो वितरण करने के लिए कई सारे जो सेवक हैं, लगभग कृष्णदास कविराज कहते 20 सेवकों को रघुनाथ दास गोस्वामी ने नियुक्त किया था उसका वितरण करने के लिए। और सबसे पहले नित्यानंद प्रभु, जब नित्यानंद प्रभु ने गंगा में स्नान किया, अपने वस्त्र आदि बदले, तो नित्यानंद प्रभु के हाथ में दो ऐसे पात्र दिए, दो प्रकार का जो चिवड़ा है वो नित्यानंद प्रभु के हाथ में दिया, और नित्यानंद प्रभु उसको देखने लगे। और इतना ही नहीं, जितने भी महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु के संगीत है, उद्धरण दत्त, गौरीदास पंडित आदि, ये सबके पास अलग अलग पात्र दिए गए, और जितने भी आसंख्य लोग आए थे वो मंडलाकार एक वृत्त बनाकर नित्यानंद प्रभु के इर्द गिर्द बैठ गए। तो इतना अधिक बड़ा वृत्त वो हो रहा था कि किसी को जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। सोचो, महाफीस्ट हो रहा है और हमारे प्रसादम हॉल में जगह नहीं होती, तो पूरा मेन गेट तक लाइन चला जाता है। तो यह लाइन कहाँ चला गया था, गंगा के अंदर। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कई ऐसे लोग जिनको स्थान नहीं मिला, उन्होंने अपने हाथों में वो दो पात्र लिए और देख रहे थे, इसमें गरम दूध वाला चिवड़ा है और इसमें गाढ़े दूध वाला है। तो ऐसे चिवड़ा को वो लेकर, अपने अपने पात्रों को हाथों में लेकर गंगा में जाकर खड़े रहे। कुछ लोग कमर तक खड़े थे, इतना अधिक हजारों लोग वहां एकत्र हुए थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं, केह ऊपरे केह तले केह गंगा तीरे बेश जना तीन ठाई परिवेशन करे। कुछ लोग ऊपर जाके बैठे थे पेड़ों में, कुछ लोग नीचे थे, कोई गंगा के पानी के अंदर, कोई उसके तट पर। तो ऐसे सब लोगों को ये प्रसाद वितरित हो रहा था। और ये जब सब तैयारी हो गई, अभी कोई महाप्रसाद गोविंद नहीं बोल रहा था, हर कोई नित्यानंद प्रभु की ओर देख रहा था और सब देख ही रहे थे। तो उसी समय राघव पंडित का आगमन होता है, क्योंकि राघव पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु आए थे। तो राघव पंडित ने बहुत सारे घी में बने व्यंजन वो लेके आए, और नित्यानंद प्रभु को देखा कि अरे, उनको लगा कि थोड़े लोग होंगे, उनके कुछ संगी और नित्यानंद प्रभु जिनको मैं खिलाऊंगा। देखा हजारों लोग हैं और सबके हाथों में हम बर्तन हैं, चिड़ा लिए हुए हैं। तो राघव पंडित जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो क्या करते, सारे पकवान नित्यानंद प्रभु के सामने रखते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तो आपका घर में इंतजार कर रहा हूँ, घर में आपके लिए मैंने असीम मात्रा में व्यंजन बनाए हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि वो सारे व्यंजन में रात्रि में दूंगा आपके घर में आकर, मुझे यहाँ भोजन करना सबसे आनंददायी लग रहा है। गोप जातिया में बहु गोप गण संगे आमे सुख पाई यही पुलिन भजन भोजन रंगे। वो कहते हैं मैं तो ग्वाल हूँ और मुझे गंगा के किनारे या यमुना के किनारे भोजन करना ही अत्यधिक सुखमय या आनंदमय लगता है, इसलिए मैं रात में आकर तुम्हारे घर भोजन करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित का हाथ पकड़ा, उसको भी बिठा दिया। राघव पंडित जी भी बैठ गए और उनके हाथ में भी दो पात्र पकड़ा दिए। और फिर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने लगे, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव है, रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने लगे और चैतन्य महाप्रभु को वो बुलाने लगे। स्मरण करने मात्र से चैतन्य महाप्रभु उस उत्सव में भाग लेने के लिए प्रकट होते हैं। किस पर कृपा करने के लिए? रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर। तो ऐसे महाप्रभु, कृष्णदास कविराज कहते हैं, कि महाप्रभु सदैव चार स्थानों में प्रकट रहते हैं, सचिर मंदिर आर नित्यानंद नर्तने श्रीवास कीर्तन आर राघव भवने। जब भी सची माता कुछ भोग बनाती है अपने घर में, उसको खाने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं, और जहां भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे उसको देखने के लिए महाप्रभु प्रकट होते हैं, और श्रीवास ठाकुर के घर में जब कीर्तन होता है तो वहां प्रकट होते हैं, और राघव पंडित के घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो आज जैसे नित्यानंद प्रभु ने स्मरण किया, चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु देखकर हंसने लगते हैं, तो नित्यानंद प्रभु तुरंत अपने हाथ में जो पात्र थे उनमें हाथ डाल के चिवड़ा उठाते हैं, और कृष्णदास कविराज कहते ठूस ठूस के भरा, किसके मुंह में? चैतन्य महाप्रभु के मुंह में, नित्यानंद प्रभु ने, और महाप्रभु खा रहे हैं, जगह नहीं है उनके मुंह में, नित्यानंद प्रभु ठूस रहे हैं। फिर महाप्रभु ने भी अपना हाथ फैलाया, एक पात्र से चिवड़ा उठाया और किसको खिलाया? नित्यानंद प्रभु को। तो ऐसे एक दूसरे को खिलाते जा रहे थे, आनंदित होकर वो हंस रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु उनका हाथ पकड़ते और सारे जितने भी लोग बैठे थे उनको देखने के लिए ले जाते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उनको कोई नहीं देख पा रहा था, रेयरली कोई भाग्यवान हो वो महाप्रभु को देख सकता था, केवल नित्यानंद के अलावा किसी और में सामर्थ्य नहीं था कि जो चैतन्य महाप्रभु को देख सके। तो ऐसे जब देखा कि सारे लोग तैयार है अपने हाथ में पात्र लेकर, तो फिर नित्यानंद प्रभु आज्ञा करते हैं, आज्ञा दिल हरि बल करह मोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरि लघुवान। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, आज्ञा दे कि हरि हरि का उच्चारण करके क्या करो, अब भोजन स्वीकार करो। तो सब सारे लोग जोर जोर से उच्चारण करते हैं, हरि हरि
हरि हरि।
तो ऐसे जब उच्चारण करने लगे, हर एक जो भक्त है, हर एक जो व्यक्ति है, हाँ, चिवड़ा या छिड़ा स्वीकार करता है, और सबको कृष्ण का जो यमुना भोजन है उसका स्मरण हो जाता है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने सारे वैष्णवों की सेवा की नित्यानंद प्रभु के कारण, और देखा कि कई सारे और भी लोग आए हैं दूर दूर से इस उत्सव को देखने के लिए नहीं, जिनके पास चिवड़ा दही और ये सब कुछ था, अपना दुकान लेके आए थे, और दुकान उन्होंने नदी के किनारे अपना लगा दिया, और रघुनाथ गोस्वामी ने सोचा रहे इतने दूर से आए हैं सब लेकर, सेवकों को कहा सब कुछ खरीद लो, सब कुछ खरीदा और दुकान वालों को भी खिलाने लगे। हाँ, तो इस प्रकार से रघुनाथ गोस्वामी ने सब लोगों को तृप्त कर दिया इस चिवड़ा के द्वारा, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से तृप्त हो जाते हैं, और फिर नित्यानंद प्रभु ये जो रघुनाथ गोस्वामी की जो सेवा है उसको विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन रघुनाथ गोस्वामी ने ये चिड़ा दधि उत्सव मनाया था नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से। तो नित्यानंद प्रभु फिर उसी स्थान में प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत विश्राम करते हैं, और रात्रि के समय राघव पंडित के घर में चले जाते हैं संध्याकालीन भोजन ग्रहण करने के लिए। जब नित्यानंद प्रभु वहां गए तो वहां चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु जोर से नृत्य करने लगते हैं, उनके घर में नाचने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनका नृत्य देखने के लिए प्रकट होते हैं, और फिर राघव पंडित कहते हैं कि अभी बहुत हो गया नृत्य, अभी लेट नाइट हो गई है, आपका नृत्य बंद करो, अभी आप प्रसाद ग्रहण करो। तो राघव पंडित उन सब दोनों को प्रसाद सर्व करते हैं, और उनके प्रसाद के उपरांत फिर रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाते हैं, चरणों में जाकर उनसे निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर उनको कहते हैं, आदम पामर मुहिन जीवादा मोर इच्छा हय पाओ चैतन्य चरण। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे नित्यानंदा, मैं तो मनुष्य में सबसे अधिक आदम हूँ, सबसे अधिक पापी हूँ, पतित हूँ, तिरस्कृत हूँ, लेकिन मेरे हृदय में ये इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं, वामन हया जन चांद दरे बारे चाय आने कय तन कैनो ताते सिद्धनाय। वो कहते हैं कि मेरी स्थिति तो उस बौने व्यक्ति की तरह है जो व्यक्ति बौना होकर चांद को छूना चाहता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, चैतन्य चंद्र है। तो वो कहते हैं ये मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है, मैंने कितना सारा प्रयास किया लेकिन मैं विफल हो गया, सफल नहीं रहा। तो इस प्रकार से निवेदन करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और वो कहते हैं कि केवल चैतन्य महाप्रभु के जो चरण है वो आपके कृपा से ही संभव है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आदम से आदम व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करता है यदि वो आपकी शरण ग्रहण करता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि आप क्या करो, मेरे ऊपर कृपाग्रह हो जाइए, कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिसके द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु के जो चरण है उनको प्राप्त कर सकता हूँ, और आपके जो चरण कमल है मेरे माथे पर रखिए, सर पर रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बिना किसी कठिनाई के मैं चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकूं, उनकी शरण ग्रहण कर सकूं। जब ऐसी प्रार्थना नित्यानंद प्रभु के चरणों में रोते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी ने की तो चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हंसने लगे। सुनि हासी कहे प्रभु सब सब भक्त गने, यार विषय सुख इंद्र सुख समय। वो नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और सारे भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि देखो देखो इस रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ को देखो, ये जो रघुनाथ है इसके पास विषय सुख इंद्र के समान है। जो इंद्र है सदैव विषय सुख में डूबा रहता है, उसी मात्रा में इसके पास विषय सुख इतना अधिक है, लेकिन चैतन्य कृपा से ही नाई बाय मने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या है, इसका अनुराग उन विषय सुख में नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हे सारे वैष्णव गण, आप सब क्या करो, सबे आशीर्वाद करो, आप सब आशीर्वाद करो कि जिसके द्वारा ये जो रघुनाथ है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति हो जाती है, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मलोक का सुख भी तुच्छवत प्रतीत होता है। तो ये रघुनाथ है जिसके लिए ये भौतिक संसार का जो सुख है तुच्छवत है। इसलिए श्रीनिवास आचार्य कहते हैं त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, कि ये जो मंडलपति हैं, बड़े बड़े धनी मानी ये गोस्वामी हैं जिन्होंने इस भौतिक सुख का त्याग किया है, हाँ तुच्छवत, हाँ तुच्छ के बाती। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति नित्यानंद प्रभु सारे वैष्णवों से कहते हैं कि आप यदि कृपा करोगे तो ये जो रघुनाथ है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेगा। और ये बोलकर रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर नित्यानंद प्रभु अपने चरण रखते हैं और वो कहते हैं कि हे रघुनाथ, तुम्हारी जो सेवा है चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार की है, तुमने इतना पुलिन जो भोजन प्रदान किया सारे भक्तों को, जिसको महाप्रभु ने आकर स्वयं स्वीकार किया और उस भोजन को स्वयं उन्होंने ग्रहण किया है, तो निश्चित रूप से आप इस भौतिक जगत के चंगुल से छूट जाओगे और जल्द ही आप नीलाचल पदार्पण करोगे, और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु आपको निश्चित रूप से स्वरूप दामोदर के अंडर रखेंगे और आपसे सेवा स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को आश्वासन देते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यधिक आनंदित होते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी वापस अपने घर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चिड़ा दही उत्सव है ये वास्तव में ऐसा उत्सव है कि जिसके द्वारा हम सीखते हैं कि वास्तव में भगवान को अप्रोच करना है तो आदि गुरु नित्यानंद प्रभु के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है हमें स्वीकारने का प्रयास करना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधि है वो आध्यात्मिक गुरु हैं, तो कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु या वैष्णवों को लांगू और भगवान कृष्ण को अप्रोच करूँ। हाँ, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे हरिवंश, वह राधा रमन मंदिर में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी खड़े थे तो ये हरिवंश पान खाकर तांबुल खाकर अपने वोट लाल करके ऐसे चबाते चबाते अंदर आए। अरे एकादशी था, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा अरे क्यों ये खा रहे हो एकादशी के दिन? ये कहते कि राधा रानी का प्रसाद है, कुछ भी हो जाए राधा रानी का प्रसाद नहीं छोड़ूंगा। पहले तो प्रणाम करके चले गए कि ठीक है आगे से नहीं खाऊंगा। अगला एकादशी आया तो ये हरिवंश फिर से मंदिर में जब आया तो देखा कि चबाया हुआ है, तांबुल खाया हुआ है, तो ये कहने लगा फिर से कि ये तो राधा रानी का प्रसाद है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि एकादशी में जो अन्न आदि है वो वर्ज है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। हरिवंश तो खाए जा रहे थे और इसका परिणाम क्या हुआ, जब इन्होंने अलग से भी विग्रह आदि की स्थापना की और फिर अपने पुत्रों को उनकी सेवा प्रदान करके वो फॉरेस्ट में चले गए, जंगल में चले गए भजन आदि करने के लिए, तो कुछ चोरों के द्वारा उनकी हत्या हुई, उनकी गर्दन काटी गई और यमुना में उनको बहाया गया। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी एक दिन सुबह सुबह जा गए थे स्नान करने के लिए और उन्होंने देखा कि एक कटा हुआ सर राधा रानी का नाम लेते हुए बह रहा है, आ रहा है और वो ये भी कह रहा है कि आप मुझे क्षमा कीजिए। तो उन्होंने जब दूर से देखा कि वो नजदीक आ रहा है वो सर, तो उन्होंने देखा ये तो मेरा शिष्य है हरिवंश। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी आवज्ञा की है, हाँ भगवान को आपके सेवा के अलावा अप्रोच करने का प्रयास किया है, मेरा उद्धार संभव नहीं है, आप क्या करो आप मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। तो उसी सर के ऊपर गोपाल भट्ट को समय अपने शरण रखते हैं और तुरंत हाँ वो जो हरिवंश हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी आकर जीव गोस्वामी आदि को ये वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान को अप्रोच करना है तो गुरु और वैष्णव के माध्यम से हमें अप्रोच करना चाहिए, तभी वास्तव में भगवान हमारे लिए सुगम में है या सरल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये अमोल ये जो विधि है हमें प्रदान की है। तो ऐसा आज उत्सव है जिसके द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव को और नित्यानंद प्रभु को संतुष्ट करके चैतन्य महाप्रभु के जो चरण है वो प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ राज चैतन्य चरितामृत के श्रील प्रभुपाद के चिड़ा दहे उत्सव के रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय गौर प्रेम आनंदे। जय।